ओम शांत। आज दादी ब्रजेंद्रा जी का अनुभव या उनके जीवन चरित्र सुनाने का है। पूरे इस जितने भी एडवांस पार्टी की सोल विशेष है, वैसे तो सभी विशेष है, पर देखा जाए तो दादी जी का जो कनेक्शन रहा वो बहुत गहरा है, क्योंकि यज्ञ की जब हिस्ट्री चलती है तो उसमें दादी ब्रजेंद्रा जी का रोल शुरू से बहुत नजदीक का रहा बाबा के साथ। यहाँ तक कि ऐसा कहते हैं, एक वाणी में बाबा ने बोला भी है कि ब्रजेंद्रा दादी के लिए कि वो पूरे 84 जन्म ब्रह्मा बाबा के अंग संग किसी न किसी नाम रूप से साथ रहे। और विशेष बात जो उनके लिए कही जाती है कि जो पहली पत्रामणि ब्रह्मा के तन में हुई तो वो भी सौभाग्य उन्हें मिला पहला सीन देखने का। तो आज हम सब मिलके कुछ दादी की स्मृतियों को इमर्ज करेंगे। सबने हर कल्प देखा भी सुना भी, तो विशेष दादी का बाबा के घर में आना और वो सीन पहला देखना, कैसे शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा में हुई और फिर दादी का विशेष पार्ट जो रहा वो जब भी कोई ट्रांस में जाना उससे क्या पूछना, कैसे बात करना। तो खास बाबा ने उनको ये सेवा मुकर्रर करी थी कराची में, जिसमें गुलजार दादी, कमल सुंदरी दादी, तो विशेष उनको मतलब कहेंगे टीचर कहें या गाइड के साथ रखता था बाबा। तो माना ब्रजेंद्रा दादी का रोल इसमें भी बहुत अच्छा रहा और साथ साथ दादी ने कुछ अपने छोटे छोटे अनुभव भी बताए, तो वो सारे जो हमने दादी की क्लास प्लस कमल सुंदरी दादी के कुछ अनुभव उनके साथ के वो सुनेंगे। और साथ ही साथ दादी की एक बहुत आश होती थी, जब बॉम्बे में या अक्सर कभी अनुभव सुनाती थी कराची के, तो दादी कहती थी कि जब मैं ना रहूं तो, जो बहनें होती थी उनको बोलती थी, जब मैं ना रहूं तो आपको नए जो आने वाले बच्चे होंगे बाबा के, उनको ये मेरे अनुभव बाबा के, उसमें भी खास जो ऑलमाइटी बाबा की प्रवेशता एक बहन के तन में हुई, तो बाबा दादी ने बोला तब सबको सुनाना। और बताते हैं दादी जब सुनाती थी तो बहुत घंटों निकल जाते थे। सोम बहन ने बताया था कि एक बार सुबह मुरली क्लास हुई और मुरली क्लास के बाद ऐसे कुछ लोगों ने दादी से अनुभव पूछा और अनुभव पूछने के बाद वो सुबह से लेकर के शाम के 6 बज गए। तो सोम बहन ने खिड़की खोल करके एक भाई को इशारा किया जो सेंटर पे थोड़ा सेवा वेवा करता था, उसको इशारा किया खाने का कि अपना तो नहीं खा रहे हो, कम से कम उस बूढ़ी आत्मा का तो ध्यान रखो, उसको तो कुछ खा लेने दो। तो फिर उसने थोड़ा सा इशारा करके सब उठे, फिर मतलब सोचिए कितना नशा होगा सुनने वालों को भी सुनाने वालों को दोनों को ही, कि सुबह मुरली से यहाँ तो क्या होता, मुरली चलती है, कुछ आते हैं फिर जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। ऐसे कहते चंद्रमणि दादी ने भी एक बार बोला था क्लास में कि ये जब मुरली होती है शुरू में तो कम दिखते हैं और जब मीठे मीठे सिकिल अदे होता है तो सारे के सारे दिखते हैं, क्या करते हैं, सब कहाँ से आते हैं, सो के आते हैं क्या। तो चंद्रमणि दादी ने क्लास में बोला था कि याद रखना इस मेरी बात को, बाद में अंत समय कहना नहीं कि दादी को पता था और दादी ने बताया नहीं। दादी ने बोला कि ब्राह्मणों में से जो भी 4 बजे के बाद बिस्तर पे रहेगा उसका अंतिम समय कांटों की शैया पर होगा, ऐसे दादी ने बोला था। तो दादी का जीवन परिचय, राधिका नाम था दादी का, ब्रजेंद्रा दादी का, और बाबा ने उन्हें करीब 12 साल की ऐसे होंगी तो एक जगह देखा था जहाँ पे निश्चय कर लिया था कि बाबा का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था कृष्ण, और भी कुछ छोटे वो घर के नाम से भी बुलाते थे, कि उसके साथ इसकी शादी करेंगे। लेकिन ऐसा बताया है दीदी ने कि दीदी की माँ यानी क्वीन मदर, उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर की बेटी या फिर बाबा के घर की बेटी बच्चों में शादी हो, लेकिन रामा कहेंगे तो वो तो नहीं हुआ। तो दादी ने बोला था कि घर में तो ऐसी मर्जी नहीं होती थी कि हम बोलें कि हमें इधर शादी करनी है या उधर। तो दादी ने बोला कि हमारी दिल ऐसी होती थी, हम भक्ति करते थे कृष्ण की, कि हमारी जहां भी शादी हो वहां में भक्ति में कोई रोक टोक ना हो। मतलब दादी कहती थी मेरे को लगन थी कि मैं कृष्ण की मीरा बनूं। तो बाबा के लिए तो बताते हैं कि बाबा ने तो पहले निश्चय किया था। दादी ने बोला मुझे पक्का तब हुआ जो बाबा के घर से कुछ सामान दादी के घर में गया, तो दादी ने सारी चीजें देखी, लेकिन दादी को एक चीज देख के बहुत खुशी हुई कि उसमें ज्यादातर जो सामान था वो सब भक्ति में, जो भोग और कलश वो सब जितना भक्ति का वो बहुत था। तो दादी ने कहा यही वो घर है जहाँ से शायद मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत भक्ति वाला घर लग रहा था। तो फिर दादी ने बोला कि जब बाबा से मिलना हुआ प्रवेशता से पहले, तो बाबा का जो जीवन था दादी को उसी से बहुत आकर्षण होती थी पहले ही पहले, कि ये कोई मतलब साधारण आत्मा नहीं, स्वभाव संस्कार बाबा का बहुत अलग लगता था, जिसके कारण दादी कहती थी मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे कि कोई ससुर या किसी ऐसे के पास है, बल्कि दादी ऐसा भी कहती है कि जशोदा माता से ज्यादा उनको बाबा के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहता था, क्योंकि उसके भाई ने शर्त रखी थी कि दादी कुछ जब शादी के बाद जाएंगी तो ना तो कुछ करेंगी, ना पांव जमीन पे रखने हैं, गलीचे में पांव पड़ेंगे, तो ऐसे से शर्त रखी। तो बाबा ने 15 दिन के अंदर नई गाड़ी और जो नया मकान जिसे बोलते हैं ये ओम निवास, जो बाबा का अपना घर था ओम मंडली जहाँ पे शुरू हुई, तो नया लिया था खास बाबा ने। वैसे जो भी उसने शर्त बोली थी दादी के भाई ने, वो सब कुछ बाबा के घर में पहले से ही था। तो दादी ने एक जगह बहुत अच्छा सुनाया कि ये जब बाबा की प्रवेशता होने वाली थी, तो दादी कहती कि इतना मतलब बाबा में चेंज देखा कि शादी से टाइम और बाद में, तो उस समय तो बाबा को नहीं समझ, दादी को नहीं समझ में आया बाबा के बारे में। तो दादी ने बोला कि हम बहुत नोट करते थे छोटी छोटी बातें बाबा की, कि कैसे बाबा में वो परिवर्तन आ रहे हैं। तो दादी ने एक बात बोली कि बाबा बीच में ये बनारस चले गए थे, वहां पे वो मूलचंद का मकान था। तो दादी बताती है कि हमको 3 पत्र आए बाबा के उस समय से, उसके बाद से जब मतलब शुरू हो गया था कि बाबा में चेंजेस, जो दादी कहती है जशोदा माता को इतने लगते थे लेकिन इतना नहीं वो सोचती थी, लेकिन ब्रजेंद्र दादी को खास लगता था कि हमारा बाबा कुछ बदल रहा है, पहले वाला बाबा भी नहीं है ये। तो दादी ने बोला पहला पत्र आया कि खजाने के पास जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो दादी ने बोला बस इतने में ही वो पूरा हो गया। फिर दूसरा पत्र आया कि खजाने के पास पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। तो कहती ये पत्र भी पूरा, और कह रही हमको समझ में ना आए कि कौन से खजाने की बात है। फिर तीसरा पत्र आया कि चाबी मिल गई, खजाना पा लिया, पाना था सो जो पा लिया। तो दादी ने बोला कि ये 3 पत्र बाबा के, और बड़े माना रहस्य थे कि क्या चीज है। उसके बाद बाबा के लिए दादी ने बोला वहीं से वहीं बाबा कलकत्ता चले गए और वहां पे सारा अपना बिजनेस पूरा किया। वहां से जब बाबा घर आए तो दादी ने कहा कि बाबा बिल्कुल जैसे बदला हुआ था, बिल्कुल जैसे कि बाबा में कुछ भी पहले वाली बात नहीं थी। तो दादी ने खास बताती हैं कि हमको उसी समय ब्रजेंद्रा वो ये अपनी जो जशोदा माता इनका गुरु आया हुआ था। तो कह रही थी वो फर्स्ट समय था जो दादी ने शिव बाबा की प्रवेशता कैसे ब्रह्मा में हुई वो सीन को देखा। तो दादी ने बोला कि गुरु का सत्संग चल रहा था और पहले ही बाबा की मतलब दादी की नजर बाबा पे थी कि बाबा एकदम कोने में और शांत बैठा हुआ है, जबकि बाबा का स्वभाव ऐसा होता नहीं था। तो दादी वो बाबा उठ के चले जाते हैं, तो दादी यशोदा माता को बोलती है कि देखो जाके क्या हुआ। तो यशोदा माता देख के आती है, बोलती है बाबा एकांत में बैठा है, उसे अच्छा लग रहा होगा तपस्या के लिए। तो दादी को ये बात ठीक नहीं लगती है और दादी उठ करके बाबा के कमरे में वापस जाती है। तो जो उस समय जो हमने ये सुना दादी के उससे क्लास में, तो बड़ा दादी का जो बोलने का ढंग था वो बड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे दादी उस समय सुनाते वक्त भी उस सीन को फील कर रही थी, कितनी आकर्षण थी। दादी ने बोला कि जब बाबा एक तो बिस्तर से नीचे जमीन पर बैठे हुए थे और बाबा के पास वो भी बैठी बिल्कुल बाबा के सामने, और बाबा की आंखें देखते कहते कि दादी को ये, दादी ने बोला हम ये भी भूल गए कि कोई सत्संग चल रहा है और हम यहाँ पे बाबा को बुलाने के लिए आए। तो हमको एक बात याद आ रही थी कि जो बाबा कहता है जो शुरू में हुआ वो फिर अंत में भी रिपीट होगा। लास्ट के भी सीन में ऐसे ही बताते हैं, जब ब्रह्मा व्यक्त होने वाला होता था, कोई आता था कोई बात को लेकर के, तो भी भूल जाता था क्या कहना, बाबा के उसी स्वरूप में वो खो जाता था। तो दादी ने बोला हम भी भूल गए कि हम बाबा को बुलाने और बताने के लिए यहाँ आए थे। और दादी ने बोला बाबा की आंखों से जो रोशनी लाइट और फिर तीन शब्द आनंद स्वरूपम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम, तो दादी ने बोला कि बाबा को दो तीन बार आवाज दी दादी ने कि बाबा बाबा क्या हुआ। तो बाबा ने बोला कि बच्ची पता नहीं कोई लाइट है कोई माइट है कोई शक्ति है, और बोला है कि एक नई दुनिया है जो स्वर्ग जैसा है, महल है सोने के, और मेरे को बोला है कि तुमको ऐसा बनाना है। तो दादी को बोला कि बच्ची मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं कैसे बनाना है। तो इतना दादी ने सुना, उसके बाद फिर थोड़ी देर में बाबा की आंखें बंद, दादी ने बोला हम बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद दादी ने फिर आवाज लगाई बाबा को, तो बाबा को बोला बाबा आप ऊपर बैठो। तो दादी ने बिठाया, उसके बाद ताला बंद करके कमरे का चाबी यशोदा माता को दे दी और वापस अपने काम में। दादी ने बोला उस दिन के बाद से दादी को भी बड़ा लगा कि कुछ विशेष बाबा के जीवन में घटना घटी है। तो वो समय था कि बताती उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद ही बाबा ने डायरियां लिखनी शुरू कर दी, खाली एक ही शब्द, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। दादी कहती थी हम जब डायरी देखते थे तो एक एक दिन में ही बाबा डायरी भर देता था, एक दिन में ही एक डायरी भर दी कि आत्मा हूँ आत्मा, और सब फिर आगे यशोदा आत्मा है राधिका आत्मा है। तो दादी को समझ में नहीं आता था इतना, लेकिन दादी को, दादी ने कहा मुझे ऐसा लगता था बाबा बदल चुका है पूरा, वो हमारा वाला बाबा नहीं रहा जो इतना हमको वो करता था। लेकिन दादी कहती थी व्यवहार में ऐसा नहीं कि कुछ न्यारा वैसा अलग, तो जो पूछेंगे तो बाबा बात भी करता था। तो यहां से दादी ने बोला कि सत्संग बाबा का शुरू होने लग गया। तो विशेष दादी की एक बात याद आती है कि दादी ने बोला पहली बार बाबा को जो गालियां खाने का कहेंगे मिला पाठ, तो दादी ने बोला वो सीन भी बड़ा ही अद्भुत था, क्योंकि जिस बाबा को इतने प्यार से रखता था उनके साथ रहे, और फर्स्ट टाइम वो सीन आई कि जब बाबा को सबके सामने गालियां खाने का वो मिला पाठ चला। तो उसमें भी बताते हैं पहले पहले जब ये सत्संग शुरू होता था तो उस समय तो कोई विरोध नहीं था, लेकिन जो पहला पहला विरोध शुरू हुआ तो ये अपनी प्रकाशमणि दादी, इनकी जो बड़ी बहन थी, वो उसका पति पहले पहले आया था, तो जो बहन थी उनकी, तो एयरपोर्ट पे जब लेने गई तो सफेद साड़ी में थी, और वो इतना बोला घर पे लाने के बाद दादी बताती, और वो कुछ बोलती नहीं, और कुछ भी वो बोले जितना भी बस वो इतना बोलती कि मैं लक्ष्मी बन रही हूँ तुम नारायण बनो, मैं लक्ष्मी बन रही हूँ तुम नारायण बनो, इसके अलावा कुछ नहीं बोलती थी उसको। तो उसको बड़ा लगा, और वो आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में फोटो भी लगा है जिसमें यशोदा माता मम्मा और वो एक भाई जो वो आडवाणी आत्माराम आडवाणी वो भी खड़ा है, और पीछे के साइड में दादी ब्रजेंद्रा भी खड़ी है, मम्मा उसमें कुमारिका दादी भी गए थे लेकिन उनका फोटो उसमें नहीं आया है। तो दादी ने बोला वो सीन हमने भी देखी, लेकिन अंदर से स्थिति भी, दादी ने बोला हमारी फीलिंग तो आई, क्योंकि बाबा को कोई ऐसा बोले तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा, जिसको भी बोलना वो हमको बोल ले, लेकिन बाबा को बोले तो वो चीज तो नहीं अच्छी लगेगी किसी को भी। और दूसरी चीज दादी का एक अनुभव कि किसी ने पूछा था कि ये यज्ञ में जर्ली जो पहनते थे ये कब से हुआ, तो दादी ने बोला मम्मा और दादी दोनों एक बार बाबा को देखने के लिए गए कि बाबा कैसे क्या कर रहा है, तो जहाँ पे कोई बाबा से कोई मिलने आया था कोई ऑफिसर, तो उससे बाबा की बात हो रही थी, तो दादी ने बोला बाबा उससे ये कह रहा था मैं इन बच्चियों को तो बुलाता नहीं हूँ, ना मैं इनको कोई सोना देता हूँ हीरा देता हूँ जो कि ये मेरे पास आए। तो दादी ने बोला कि बाबा हमारे बारे में ऐसे ऐसे बोलता है, और अगर ये देखेंगे तो इतना ही सोचेंगे कि इन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई है ये जरूर बाबा ने दी होगी, बाबा झूठ बोलता है। तो दादी ने बोला वो दिन था, उस दिन के बाद हमने कभी भी अपने शरीर पर कोई भी सोना चांदी कुछ भी नहीं पहना। और मम्मा ने भी थोड़ा बहुत बताती हैं कि मम्मा ने चेन वगैरह पहनी हुई थी तो मम्मा ने भी उतार दी। मम्मा का देखते देखते फिर सबने, तो वहां से वो यज्ञ में फिर ये पाठ हुआ कि कोई भी ज्वेलरी ऐसा सादा सिंपल रहने का, जो बांधेली माता होती थी कोई बहन होती थी तो वो पहनती थी, तो उनके लिए खैर अलग बात होती थी। और दूसरा कुछ फोटो भी लाए हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे, जो पिहू का अनुभव सुनाएंगे कि दादी का कैसे उसमें पाठ चला, कैसे वो बहन के तन में बाबा की प्रवेशता हुई थी। और एक जगह पे बात ये आई कि दादी का निश्चय बाबा पर, और दादी ने वो कैसे उन विघ्नों के बीच में पार किया। शायद अगर आज ऐसा सीन हम में से किसी के पास आ जाए तो वैसी स्थिति हो या वैसी हिम्मत हो तो बड़ा मुश्किल है। हो सकता हो शायद कोई बाहर से दिखा दे, पर अंदर से वैसी स्थिति हो पाना वो बड़ा मुश्किल था। बाबा का घर था जो जशोदा निवास। हाँ, एक चीज और याद आई कि कुछ कुछ बीच बीच में भूल भी जाता है कि बहुत बड़ा है। तो दादी ने बोला कि दादी को ये बड़ी, मतलब दादी ने कैच करी बाबा की, कैसे घर बैठे बाबा ने सबको खींचा था, क्योंकि दादी तो घर ही में रहती थी बाबा के पास, तो जब कोई आता था तो दादी पूछती थी कि आपको कैसे पता चला, किसने बताया, तो दादी बोलती थी कि जब सब सुनाते थे कि हमको कैसे पता चला तो दादी को बड़ा वंडर लगता था। तो ये दीदी मनमोहिनी ने बताया था, और भी कुछ कुछ बहनों ने बताया था कि दीदी मनमोहिनी का नाम लिया था दादी ने, कि सपने में सुबह के समय देखा कि कोई उसको बोल रहा है बच्ची बेटी मैं आ चुका हूँ आ जाओ। तो उस मतलब दीदी ने बोला कहाँ आ जाओ, तो पूरा एड्रेस बताता था, खातुर बंधन लाइन जशोदा निवास में मैं आ चुका हूँ। तो कई लोग ऐसे आते थे तो दादी बोलती थी हम उससे पूछते थे तो कई यही एड्रेस बताते थे जो कि कभी वहां गए नहीं, कुछ कुछ जो बिल्कुल थोड़े नए थे जानते नहीं थे किसका, तो बाद में पता चलता था ये तो दादा लेखराज का ही मकान था। तो दादी ने आगे जो बता रहे थे कि दादी का निश्चय दादी का हिम्मत, जहां पर उन दिनों बाबा बाहर थे और केवल मम्मा और कुमारिका दादी ये लोग ही थोड़ा सा अपना पूरा चलाते थे, और 10 बजे का लगभग समय होता था कि सत्संग चलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अंदर सत्संग चल रहा था और बाहर से ही कुछ लोगों ने थोड़ा हमला जैसा शुरू किया, पत्थरबाजी शुरू करी, शोर किया दरवाजा खोलने को, तो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। और दादी ने बोला कि हम लोगों ने एक भाई था उसमें, उसको बोला कि तुम जाओ और जाके पुलिस को बुला के लाओ क्योंकि लोग हंगामा कर रहे हैं। दादी ने बोला वो भाई की शक्ल तो हमने उस दिन के बाद देखी नहीं कभी, क्यों कहां चला गया, पीछे का रास्ते से भेजा खिड़की से। तो तो दादी ने बोला कि वो लोग तो आगे का जो दरवाजा था वो तो पूरा तोड़ दिया था और अंदर आ गए थे, तो पत्थर वगैरह भी फेंका, कांच भी तोड़े और गेट के पास आग भी लगाई, जो कि शुरू में सबने हिस्ट्री में सुना होगा कि लाखा भवन को जो आग लगाई। तो दादी ने बोला हम मम्मा और दो तीन बहनों का भी दादी ने नाम लिया था, जो बड़ा दरवाजा था तो वहां पे मतलब दादी मम्मा और ये लोग खड़े हो गए लग के, ताकि वो अगर थोड़ा थोड़ा भी धक्का देंगे तो दरवाजा खुल ना जाए। तो दादी कहती है कि जो उसमें से एक आदमी था उसकी आवाज आ रही थी कि अरे ये दरवाजा तो एकदम बंद है, हिल ही नहीं रहा है। तो दादी ने कहा कि जब हम खड़े थे तो हमको लग रहा था ये हमारी शक्ति नहीं है, ये हमारे अंदर किसी और की शक्ति है जो इतने बड़े उसको भी बंद कर दिया। तो दादी ने बोला फिर वो लोग ऊपर से चढ़ रहे थे तो हम लोग उनके हाथ पे थोड़ा सा मारते थे तो वो लोग नीचे गिर जाते थे। तो इतनी देर में थोड़ा टाइम हुआ तो किसी ने बोला कि कुछ लोग आए, जिसमें पुलिस भी आई, तो वो दादी की बहन थी जिसका नाम था पुतलू बहन, और दादी उसका युगल था जिसका नाम था गोविंद भाई, गोविंद नाम था, पूरा नाम गोविंद राम ऐसे करके कुछ था। तो दादी ने बोला कि एक अनुभव में तो ब्रजेंद्रा दादी ने ऐसे बोला है कि दादी ने कि इसने ही करवाया इसने है और पुलिस को भी यही लेके आया मदद के लिए। लेकिन दूसरा एक अनुभव में दादी प्रकाशमणि ने इसी भाई के लिए बोला कि बहुत बड़ा व्यक्ति था सिंध का और आगे मिनिस्टर वगैरह भी बना, तो इसने कराची में जब ये लोग आ रहे थे तो इसने बहुत मदद करी थी बाबा की, इसको बाबा से बहुत आकर्षण था, ज्ञान वगैरह नहीं सुनता था, ये पुतलू बहन थोड़ा ज्ञान में थी तो इसने बड़ी मदद करी। लेकिन दादी ने बोला कि इसने ही करवाया होगा। तो फिर ये आया तो सब खत्म हुआ, लेकिन दादी ने बोला बहुत कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन हम लोग की हिम्मत जो थी वो बढ़ गई कि देखो ऐसे समय में भी जो है भगवान ने मदद करी, क्योंकि ये यज्ञ जिसका चल रहा है कौन बैठा है। तो दादी बोलती थी हमको तो निश्चय रहता था पक्का कि कुछ भी हो हम भगवान के साथ में हैं तो वो हमारी रक्षा जरूर करेगा। कभी भी कुछ भी होता था, चाहे कोई झगड़ा, चाहे ओम निवास में जहां बाबा ने बोर्डिंग खोली थी वहां हुआ हो, वहां पे भी दादी गए थे जाते थे, तो ज्यादातर तो वहां की पांच माताएं कन्याओं को विशेष बाबा ने निमित्त बनाया था। तो हमको किसी ने पूछा था जब गंगे दादी का सुनाया था तो उसमें पांच दो बात हमने बताई थी कि उनके नाम किसी को नहीं पता होंगे और एक फोटो है उसमें दिखाएंगे वो पांच बहनें कौन थी जिनका उन था, महेंद्र भाई ले आओ। तो उसमें ये वाला है, इसमें पहले ये मिठू दादी हैं जो कि कन्या थी, और पीछे कुमार बाजू में कुमारका दादी हैं, उसके बाद शांतामणि दादी हैं, कला बहन और शीतलमणि। ये कला बहन और शीतलमणि की तो कोई हिस्ट्री नहीं है इतनी कि ये आगे कहाँ पे क्या है, शरीर छोड़ा या क्या हुआ, बाकी तीनों का तो है। 83 में तो ये मिठू दादी ने शरीर छोड़ा था 83 में, बाकी कुमारका दादी और शांतामणि दादी को जानते ही हैं। इनको तो बाबा ने प्रकाशमणि दादी ने बोला था, इनका नाम ही बाबा ने रख दिया था पांच चिड़िया, कुछ भी होता तो बाबा कहता था वो पांच चिड़ियों को बुलाओ, क्योंकि ये पहली ऐसी कन्याएं थी जो स्वतंत्र थी यज्ञ में आते, इनको कोई बंधन नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। बाकी जितनी भी आए तो उनको कोई घर का बंधन, माता पिता का बंधन, ये पूरी छुट्टी के साथ आए, तो इसीलिए बाबा ने इनको एकदम फिक्स रख दिया था। तो ये माना यहाँ से शुरुआत होती है। फिर ये लोग, दादी ने बताया कि कराची में जब पाठ शुरू होता है दादी का कि कैसे ध्यान और इसका होता है, तो दादी ने बताया कि ये जो पहला जो ये चलता था पाठ वो बड़ा अलग चलता था। पहले ध्यान में जाते थे तो केवल वैकुंठ के ही सीन देख रहे हैं, थोड़े कुछ समय बाद होता था, शुरू होता था तो कोई चलता था तो जिसमें धर्मराजपुरी का भी देखते थे, और बाबा सबकी रिहर्सल कराता था, माना कि धर्मराज के सीन में भी कैसे सजाएं मिल रही वो भी दिखाता था करके। तो गंगे दादी में हमने सुनाना ध्यान में नहीं आया, तो गंगे दादी ने भी बोला था एक बार वहां का एक भाई था अपने ही यज्ञ में, उसके सात जन्म बाबा ने बताए कि कैसे उसके सात जन्म को बाबा ने विकर्म उसके विनाश किए, दादी ने तो ऐसे एक लाइन में बता दिया था। तो इसमें ब्रजेंद्र दादी ने बताया कि हम सब देखते थे और पूछते थे कि अच्छा क्या देखा, तो एक एक सीन वो देखते थे फिर बाकी बताते थे। और ये अपनी संदेशी दादी थी तो ये उसको एक्शन में लाते थे ग्रुप में, और बाबा सब ड्रेस देता था कि कैसे क्या पहनना है। और पूरा रात भर दादी बताती थी, 9-10 बजे के बाद हम लोग कहीं चलता था और वो सीन करते करते पूरा सुबह भी हो जाती थी। ये बाबा का घर है जहाँ पे जो हमने अभी बताया ना कि जो झगड़े का हुआ था, ये दादी ब्रिज इंद्रा का है। दादी उस समय बस भी चलाती थी, गाड़ी भी चलाती थी, एक बार छोटा सा एक्सीडेंट भी कर दिया था, और हर काम इतने बड़े घर की होके, जो कि कुछ भी दादी का ऐसा नहीं रहा बताते कि कुछ हुआ तक नहीं, और टायर पंचर बनाना सब कुछ किया निर्मा शांता दादी ने भी। तो इन्होंने भी ये जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो उन दिनों का है जहाँ पे जो रात को सारे सीन चलते थे कि वैकुंठ में कैसे सब बैठे हैं और क्या मतलब कि चल रहा है। तो एक एक सीन बाबा करवाता था और रात भर इनका ये सब चलता था। ये वाला जो फोटो है जो अभी हम बताएंगे, जिसमें जो पधरामणि विशेष बाबा की जिस बहन में हुई, तो ये गद्दी थी जिसमें वो बहन को बिठाया है और उसके बाजू में मम्मा बैठी है और ये बाबा। बाबा उस समय का कैसा था, बिल्कुल वो शुरुआत की बात, एकदम शुरू शुरू में ये बाबा का रोल चला था। तो इसकी जो विशेष चीज रही कि दादी ने बोला ये सारा कुछ चलता था, उससे पहले एक चीज और बताते हैं कि दादी ने बोला कि हर एक से पूछना, जो बाबा के जो क्लिफ्टन का बंगला था, तो दादी प्रकाश ब्रजेंद्रा दादी वहीं रहती थी बाबा के साथ, परिवार केवल बाबा का रहता था। अब जब ये याद आएगा तो बताएंगे, हम भी वहीं कहीं होंगे, हो सकता है ब्रजकोटी में। तो दादी ने एक चीज बोली कि पहले पहले ये अपनी गुलजार दादी, इनका पार्ट शुरू हुआ था, तो ये मम्मा के पास बेबी भवन में रहती थी। तो वहां पे क्या हुआ कि जो वो सीमेंट के गमले जैसे होते हैं जिसमें रखते हैं, तो वहां पे दादी अक्सर कर 6:15 पे ध्यान में अपने आप चली जाती थी। तो चंद्रमणि दादी ने सबसे पहले देखा था उन्हें कि ये गुलजार बहन को क्या हुआ, ये तो गिर जाएगी। तो फिर उसको लेकर मम्मा के रूम में गए, मम्मा के रूम में मम्मा ने पूछा क्या देखा तुमने, तो उसने बोला कि बाबा को देखा। तो बाबा तो वहां क्लिफ्टन पे है, इसने बाबा को कहां देख लिया। तो ये तब बाबा आए शाम को, तो बाबा ने गुलजार दादी को लेके गए और गुलजार दादी को ब्रजेंद्रा दादी के पास छोड़ दिया कि इससे सब पूछो कि ये क्या देख रही है। तो बाबा को बोला, बाबा ने बोला बच्ची को बाबा वहां नहीं रखना चाह रहा था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सब पूछेंगे तो तंग करेंगे। तो दादी ने बताया, कहा कि हमको बच्चे, जब हमने ये बात बताई तो जो बच्चे थे वो पूछते थे, कहते थे कि बच्चे कहते थे इसने कोई बाबा बाबा को नहीं देखा होगा, बाबा तो यहाँ बैठा है। ये एक बिल्ली थी, उसका नाम था पूसी। तो बाबा ने बोला कि इसने जरूर पूसी को देखा होगा और बाबा समझ लिया सफेद रंग की बिल्ली थी। तो दादी ने बोला कि जैसे शाम के 6:15 बजते थे तो अपने आप दादी की आंखें बंद होती थी और ये अपनी ब्रजेंद्रा दादी एक प्रश्न लिख के दे देती थी, और बताते हैं कि उस पूरे समझने में 2-4-6 दिन लग गए, क्योंकि दादी जितना प्रश्न देती थी वो उतना ही पूछती थी कि ब्रह्मा है, बस फिर आगे पूछती थी अरे कौन ब्रह्मा है, तो बोलता था संपूर्ण ब्रह्मा है, तो फिर उसके बाद पूरा हो गया, फिर कहती थी अरे संपूर्ण ब्रह्मा तो ये ब्रह्मा कौन है, तो फिर आगे पूछती थी तो वो कौन है, तो कहता तो ये वो साकारी है, पुरुषार्थी है, ये उसी का संपूर्ण स्वरूप है। तो ऐसे करके धीरे धीरे पता चला। तो दादी ने एक जगह बताया कि एक बार क्या हुआ कि गुलजार दादी को उसी समय बाबा के पास थे तो फीवर बहुत ज्यादा हो गया था, 4-5 के करीब हो गया था। तो दादी ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि बाबा गुलजार बहन को फीवर बहुत हो गया है, इसको दिखाना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बाबा के पास ले आओ। तो बाबा ने बोला कि जाओ बच्ची बाबा के पास चली जाओ। तो दादी ने बोला कि बाबा के पास गए और ब्रजेंद्रा दादी ने बोला करीब 2-2.5 घंटे तक वो बाबा के पास रही गुलजार दादी। तो बाबा ने बुलाया ब्रजेंद्र दादी को, अभी इसका फीवर चेक करो कितना है। तो बार बार वो थर्मामीटर लेके चेक करते, खैर बाबा कम हो रहा है ये तो फिर बाद में एकदम ऐसे बोला दादी ने कि कुछ घंटे बाद एकदम नॉर्मल हो गया। तो बाबा के पास गई और बाबा को बोला, बाबा गुलजार बहन का फीवर एकदम चला गया, नॉर्मल हो गई। तो कहा तो उसको बुला लो। तो दादी ने दो चार बार आवाज लगाई लेकिन वो नहीं आई। तो बाबा को बोला, बाबा गुलजार बहन तो आती नहीं नीचे। तो बाबा ने आवाज दी और आए। तो फिर दादी ने गुलजार दादी को पूछा कि तुमने क्या देखा, और हमने आवाज लगाई तो तुम आई नहीं, और बाबा ने आवाज लगाई दो तीन बार तुम वापस आ गई। तो बोला कि जब हम बाबा के पास थे तो हम सोए हुए थे, बाबा हमें हाथ फेर रहा था, तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा की आवाज हमको ऐसे नजदीक सुनाई दी जैसे कि कोई बाजू के ही कमरे में है। तो दादी ऐसे पूछने का, तो फिर दादी ने एक जगह ये भी बताया कि कमल सुंदरी दादी जब ध्यान में जाती थी तो कुछ ऐसी दो तीन बहनें थी जो कि छह छह महीने और एक एक साल तक ट्रांस में रहती थी। तो ये अपनी कमल सुंदरी दादी, और दादी का नाम तो नहीं लिया था, कमल सुंदरी दादी का दूसरी चीज में नाम लिया था, लेकिन इनका पार्ट भी ध्यान में बहुत लंबा चला था। तो दादी ने बोला कि जो बहन जाती थी उसको पूछती थी कि अच्छा बताओ कि वहां पे क्या देखा, कैसा होगा। तो दादी बोलती थी, हम उसको जब सेब देते थे खाने को तो वो हमको बोलती थी, मैया ये तो बड़ा सख्त है, और उसको बोलती थी जरा सा देते थे वो एकदम करंट ऐसा लगता था उसको कि इसमें ना तो खुशबू है ना तो इतना सॉफ्ट भी नहीं, इतना हार्ड हार्ड है। तो वो कहती थी फल वो कोई भी ऐसे पसंद नहीं करती थी, केवल दूध रहता था तो एक एक चम्मच ऐसे देते थे, और कोई भी चीज को देखती थी उसे बड़ा आश्चर्य लगता था। गन्ना अगर खाते थे तो बोलती थी लकड़ी क्यों चबाते हैं, और सब्जियां पत्ते वाली होती थी घास फूस क्यों खाते हैं यहाँ के लोग। तो दादी ने बोला, एक बार हम उसको ले जा रहे थे साथ में चलने को, तो कह रही थी स्नान करके आते हैं। तो पूछा क्यों जाना है, तो कह हम लोग तो तीन तीन बार स्नान करते हैं। तो बोली कि कहीं जाने के लिए भी स्नान करना होता है। तो दादी बोलती है हम लोग को एक बार भी करना मुश्किल होता है, ये तीन तीन बार करते हैं। तो फिर दादी ने बोला ऐसे ऐसे करके दादी एक एक प्रश्न पूछती थी, जहां पे दादी ने खास एक के लिए बोला कि उसको दादी ने पूछा कि हमको पता करना होता था, बाबा पूछा था पता करो ये कौन आया है इसके शरीर में, कौन कोई सहजादी है कौन है। तो उससे पूछती थी कि अच्छा ये बताओ आज क्या पढ़ाई पढ़ी। तो बताती थी कि हमने जो दो बादशाही हुई है लक्ष्मी नारायण की उनके बारे में जाना। तो दादी कहती थी हम समझ जाते थे तीसरे समय की आई हुई कोई सोल है। तो दादी ये भी पूछते थे कि उससे पूछते थे बताओ और क्या पढ़ा। तो वो बताती थी कि जो लक्ष्मी नारायण होंगे वहां पे तो जो कार्य भी आगे बढ़ेगा उसमें लक्ष्मी के भी साइन होंगे, उसके बाद नारायण के होंगे। तो दादी ने हंसी में बोला जो क्लास में कि भाइयों डर मत जाना, भाइयों का भी उतना ही है। तो दादी ने हंसते हुए ये बात बोली थी। तो दादी ने बोला कि दोनों का मतलब बैलेंस होगा, ऐसा नहीं कि किसी का कम और किसी का ज्यादा। फिर दादी ने बोला कि एक बार क्या हुआ कि जब क्योंकि शुरू में ऐसा दादी अपने विचार से बताती है कि दादी को ऐसा लगा कि सबको ये लगता था ब्रह्मा कृष्ण है और मम्मा राधे है और यही भगवान है। और फिर इसके बाद आया कि इसके बाद दादी को गुलजार दादी के थ्रू संदेश आया कि ऑल माइटी बाबा जो है वो तीन दिन के लिए विशेष, वैसे तो 15 दिन चला लेकिन 3 दिन पूरा दिन एक बाबा भवन था उसके ऊपर का फ्लोर था वहां पे 3 दिन तक वो रहेंगे। और उसमें 3 लोगों का नाम लिया कि जो उनके साथ वहां पे बैठेंगे, बाकी कोई भी नहीं बैठेगा, जिसमें विश्व किशोर भाव, विश्व रतन दादा और ब्रजिंद्रा दादी के लिए रखा। तो दादी और ये बहन को जिसके अंदर बाबा की प्रवेशता होनी थी, तो ये जो दिखा रहे शायद वहीं का ही होगा जो इतना इसको सजाया हुआ है। तो वहां पे पूरा कोई भी नहीं था हॉल में। और फिर बाबा जब दादी आए तो दादी ने बोला कि इस बहन की आंखें बंद थी और उसने बोला कि ब्रज बेटी जो भी प्रोग्राम दिया है, 4 बजे बोला था कि 4 बजे आएंगे और जितने भी बाबा के भवन थे वहां पे कोई आवाज नहीं होगा, एकदम मौन होंगे, केवल मुरली का ही आवाज होगा, मुरली चलेगी। तो बाबा ने ऐसा ऐसा डायरेक्शन दिया था कि बोला कि जो भी नियम दिया है उसका फॉलो नहीं हो रहा है। तो बाबा ने बोला देखो जाके बाहर कोई बैठा है, तो वो एक बहन भी बैठी थी, एक भाई भी आके बैठ गया था। तो ब्रह्मा बाबा को बोला, बाबा ने बोला कि ये बात बताने के लिए आयो, जाके उसको हटाओ वहां से, भेजो उसको नीचे। तो वो वापस गए, फिर उसने बोला कि नहीं अभी भी आवाज आ रहा है बेबी भवन से। तो बाबा ने बोला कि मम्मा की जिम्मेदारी है, मम्मा जवाबदार है, मम्मा वहां बैठी है, मम्मा को फोन करो। तो मम्मा को फोन किया, मम्मा के पास फोन गया, तो मम्मा ने बोला कि अभी कुछ आवाज नहीं आएगा, हमने रोक दिया है। तो फिर उसके बाद बोला कि पहले तो विश्व किशोर भाव से मिला और विश्व किशोर भाव को नशा चढ़ाया कि कैसे भविष्य का जो राजकुमार का, ज्यादा तो डिटेल कुछ दादी ने नहीं बताया, बस इतना बोला कि उसको राजकुमार पने का नशा चढ़ाया बाबा ने, उसको मिला। फिर विश्वरतन दादा को मिला, उसके बाद इनको छोड़ दिया, ये वापस चले गए। उस कमरे में केवल दादी और ये दोनों ही लोग थे। तो दादी को पूछा कि बताओ कि जो माला बनेगी 108 की, सब पुरुषार्थी एक जैसे हैं, सबको बाप एक जैसा दे रहा है, फिर भी क्या होगा जो पद में अंतर पड़ जाएगा। फिर पूछा कि यहाँ जो पुरुषार्थ करते हैं क्या फर्क है कि कोई मेल फीमेल बनता है, उसका क्या है। तो ऐसे से दादी कह रही थी, वो पूछता था, हमको तो इतना समझ में नहीं आता था, तो हम तो कुछ नहीं बताते थे। तो दादी ने बोला कि इसने फिर बोला कि दादी ने ये भी बोला कि रात के 12-1 बज जाते थे और रात का जो समय होता था वो कहती थी बस ऐसा लगता था अभी 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ है। तो फिर इसने सुबह बोला कि यज्ञ माता के पास जाना है। तो फिर बाबा ने भी बोला कि पहले बाबा मिलेगा, लेकिन बाबा ने बोला नहीं, बाप बच्चों के पास आया है, इसलिए बाप जो है बच्चों के पास खुद जाएगा। तो दादी कही कि हम बाबा के पास बेबी भवन में ले गए, वहां पे मम्मा ने सारी तैयारी भी की हुई थी, और फिर उसके बाद बाबा से मिला। तो मम्मा ने ब्रजेंद्रा दादी को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, तुम पूरा दिन साथ में रहे, तुमने सब देखा, सब बताओ, कौन लगता है, क्या लगता है। तो दादी ने बोला कि हमको तो ऐसे ही लगता है कि ये वही है, क्योंकि दादी ने बोला दादी का पहले एक ऑपरेशन होने वाला था, और दादी बता रहे थे कि हम बाबा के कमरे के क्लिफ्टन के पास, बाबा के कमरे से बाजू से निकल रहे थे, तो बाबा सुबह के समय बाबा ने देख के बुलाया, कहा कि बच्ची ऑपरेशन के लिए जा रहे हो। तो बोला हाँ बाबा। तो बोला कि बाबा ने कि नहीं जाना है, बाबा ने मना किया है। तो दादी वापस चली गई, विश्व किशोर भाऊ भी साथ में जाने वाले थे। तो विश्व किशोर भाऊ ने पूछा कि क्यों मना किया, तो दादी ने बोला हमने बाबा से नहीं पूछा, बाबा ने बोला, बाबा ने मना किया है इसलिए हम वापस आ गए। तो ये बाबा ने बोला कि बाबा ने ही मना कराया था कि बाबा तुम्हारा सर्जन बन गया है। तो दादी ने भी ऐसे बोला कि बाबा ने कोई गोंद मंगवाया, उसकी दवा रात के 12 बजे बनाई, उससे खिलाया। तो ऑपरेशन दादी का फिर कैंसिल हो गया, उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। फिर जब ये ब्रजेंद्रा दादी और मम्मा का चल रहा था, रात भर क्या हुआ, मम्मा पूछ रही थी ब्रजेंद्रा दादी से, तो मम्मा ने ऐसे पूछा कि कौन आया है। तो बाबा ने शायद देखा, तो मम्मा ने और दादी ने देख लिया कि बाबा इधर ही देख रहा है, क्योंकि उस समय बाबा ये बैठ करके सब बच्चों से वहां के मुरली की रूह रिहान कर रहा था। तो बाबा ने सबको देखते हुए सभा को बोला कि देखो यज्ञ माता पूछ रही है कि आज उसके यज्ञ में कौन आया है। तो बाबा ने बोला कि ब्रजेंद्रा मम्मा को बताना कि यज्ञ माता के यज्ञ में कौन आया है। यहाँ पे कमल सुंदरी दादी ने भी अपने एक अनुभव में बताया कि जब ये प्रवेशता हुई थी तो पूरी एक टाइम की तो मुरली में खाली बाबा ने यही बोला कि तुम सब बच्चे मुझ पर समर्पित हुए हो, मेरे लिए आए हो। बाबा ने, दादी ने तो ऐसे बोला, कैसे बोल रहा था कि क्या तुमने कभी इसे देखा नहीं है, क्या सिंध में ये वही हैदराबाद का व्यापारी था जिसको तुमने देखा है, क्या इसने अभी भगवे वस्त्र पहने हुए हैं। तो तुम्हारा जो समर्पण है, तुम जो आए हो और जिस कार्य के लिए मैंने ये यज्ञ रचा है, मैं आया हूँ, तो ऐसे बहुत बड़ा परिचय दिया था। तो उसके बाद तो ये पाठ चला थोड़े दिन, फिर पूरा हुआ, उसके बाद फिर 2 मिनट तो दादी का फिर यहाँ से पूरा होता है। उसके बाद दादी का नष्टो मोह का भी पेपर बहुत चला, क्योंकि जो दादी के दो बेटे थे जिसमें से एक का तो सिंध में कराची में शरीर छूटा और दूसरा जो बेटा था वो चेचक हुआ, उससे ध्यान में भी जाता था और बाबा खुद मिलने उससे हॉस्पिटल में गए और वहां पे भी दादी की बहुत अच्छी अवस्था थी। फिर उसके बाद दादी के युगल का किशन जो कि विदेश चला गया था, उसके दोनों ने छोड़ा। एक तो बहुत अच्छा ध्यान में जाता था तो दादी जब खिलाती थी उसको पूछती थी कि क्या, तो वो खाता नहीं था कुछ भी, बहुत ज्यादा था, तो दादी वो बोलता था कि बाबा के पास गए, बाबा ने सूबी रस पिलाया इसीलिए अभी भूख नहीं है कुछ भी। और दादी के जब युगल का फोन आया किशन जो, तो उसने बोला मिलने को, तो दादी ने मना कर दिया, कहा कि मेरे को नहीं मिलना है, विदेश गया था। तो जब दादी बॉम्बे सेंटर पे थी और 1 जनवरी 90 में दादी ने शरीर छोड़ा। बहुत सारा दादी का तो ये जो सुना है, दादी ने जो हमने सुना था, ये तो करीब 1.5 घंटे का है। इसमें बहुत सारी बातें दादी ने बताई, बाबा को पहले से बोला था कि बीमार होगी मुझको बुला लेना किसी संदेशी से, तो बाबा एक बार तो भूल गई थी बुलाना और फिर दूसरी बार जब आए तो मतलब कि बाबा जाते समय ब्रजेंद्रा दादी को बोला अब तुम समझ गई हो, क्योंकि पहले से एक संदेशी को उन्होंने बिठा रखा था। हाँ, तो इसी का डायरेक्शन चलता था, यहाँ तक कि कमल सुंदरी दादी ने ये भी बोला कि चाबियां भी इसको दे दी गई थी, कि कोई जितनी भी भंडारे की चाबियां थी सब इन्हीं के पास थी, क्या बनना है क्या नहीं बनना। दादी ने तो बहुत विस्तार से बताया कि बाजरे की रोटी, छाछ, और फिर बाद में ब्रजेंद्रा दादी ने पूछा इनको जाके कि क्यों, बाबा ने तो पहले बोला कि जिसकी हिम्मत होगी वो ही 15 दिन तक केवल छाछ और पिएगा खाएगा। तो उसमें दादी ने बाद में पूछा बाबा ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला बाजरा पड़ा पड़ा खराब हो रहा था इसलिए। तो पुत नहीं, नहीं ये इनका नाम तो हमें नहीं पता, ना किसी में बोला है, बस ये बहन का पुतलू दादी जो थी वो इनकी बड़ी बहन थी और वो तो गोविंद राम मुखी भाई। हाँ, तो इनका ऐसे ही चलता था, इनके लिए सब विशेष, क्योंकि जब ये मम्मा के पास गए तो मम्मा ने भी अलग तैयारी करी थी और बाबा भवन में तो खास बोला हुआ था इन्होंने कैसे कैसे करना है, और पूरा एक एक चीज आती, बहुत छोटी छोटी चीजें खाने को बनाने के लिए, फिर किससे मिलना है, सारे संदेश पर दादी ने बताया रात भर बैठ के पूरा संदेश सुनाया कि कैसे क्या कर, मतलब कि क्या क्या हुआ था, मैंने किसके थ्रू मना कराया था। एक जगह एक बहन ने ये भी बोला था कि रात में ये लोग करीब 12-1 बजे बैठ के बात कर रहे थे तो मम्मा पीछे बाहर से सुन रही थी, तो मम्मा है ये तो इस दादी को नहीं पता था लेकिन ये इसको पता था, मतलब बाबा को पता था। तो बाबा ने बोला जाके देखो कोई है, तो बोला कोई नहीं, कहा जाके देखो मम्मा खड़ी है बाहर, तो उन्होंने देखा तो सही में मम्मा खड़ी थी बाहर। ठीक, ओम शांति।